अस्सलाम वालेकुम डी विजडम गेटवे के साथ, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद काजिम। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है, मारूफ समाजी रहनुमा फ़लस्तीन फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब साबिर अबू मरियम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साबिर साहब, कैसे हैं, खैरियत से आप? ठीक हैं
जी। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह।
साबिर साहब, थोड़ा सा तो पहले मुझे ये बताइएगा कि आप इंटरनेशनल मीडिया पर इतनी हाई पर भी इस वक्त बने हुए हैं और सबसे ज़्यादा टारगेट भी पाकिस्तान में आपको किया है कि आपकी कोई भी वीडियो आती है और सबसे पहले जो है वो आपके पेज पे स्ट्राइक आती है, तो ऐसा क्यों है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हमेशा से रहा है कि हक और बातिल की जंग में हमेशा हक के साथ जो लोग होते हैं उनके साथ ये मुश्किलात और मसाइब का सिलसिला जारी रहता है। ये हमारी जो मुश्किलात हैं, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही मामूली नोयत की हैं। अगर हम इसको देखें कि जिस तरह से हम सोशल मीडिया पर कोई बात करते हैं, या और ये बात क्या होती है, सबसे अहम बात यह है कि ये बात मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए होती है, मज़लूम लबनान के उन लोगों के लिए होती है जिनको बेयारो मददगार कत्ल किया जा रहा है, जिन पर बमबारी की जा रही है, जिनको सफाकियत से एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक जेनोसाइड का निशाना बनाया जा रहा है। तो उसकी हम बात करते हैं बतौर फ़लस्तीन फाउंडेशन। और अगर उसको कोई बंद करता है तो यकीनन ये जो भी है, चाहे अमरीकियों की तरफ से है, चाहे इसराइलियों की तरफ से, या उनके मकामी आलाकारों की तरफ से है, इसका मतलब है कि वो बातिल के साथ हैं और हमारी हक़ की आवाज़ को वो दबाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा ये बुनियादी वजह है कि क्योंकि जब हम मज़लूमों की बात करते हैं और उनके हक़ की बात करते हैं तो फिर ये मसाइल हमें फ़ेस करना पड़ते हैं, और हम इन मसाइल से परेशान भी नहीं हैं और किसी और को भी नहीं होना चाहिए। ये एक रास्ता है, इसमें इसी तरह की मुश्किलात आनी है। ये भी एक मुज़ाहमत का रास्ता है, एक मुज़ाहमत है जो फ़लस्तीन के अंदर है, एक लबनान के अंदर है, वो मुसल्ला मुज़ाहमत है, एक मुज़ाहमत है जो आपके महाज पर है, जो आज आप यहाँ पर ये काम अंजाम दे रहे हैं कि मसलन एक आवाज़ को बुलंद करने के लिए इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है। तो ये एक मुज़ाहमत की एक शक्ल है। तो लिहाजा अगर वो बंद करते हैं कोई बात नहीं, वो उनका काम है, वो किए जाएं। हमारा काम है कि हम उसको आवाज़ को किसी न किसी तरीके से उठाते रहेंगे ता वक्त ये कि हम अपने हदफ तक पहुँच जाएँ।
अच्छा, फ़लस्तीन फाउंडेशन जो है वो ये आपकी यहीं की पाकिस्तान की बनाई हुई है या इसका प्रॉपरली एक एजेंडा प्रॉपर फ़लस्तीन से चल रहा है?
देखिए, फ़लस्तीन फाउंडेशन बुनियादी तौर पर एक पाकिस्तानी एक एनजीओ है, पाकिस्तान में ही इस्टेब्लिश हुई है। 2008 में हमने इसको जामिया कराची से इसका आगाज़ किया था और मुसलसल अब उसके बाद, हाँ ये बात ज़रूर है कि वक्त के साथ साथ गुजरते हुए दुनिया भर के अंदर जो इंटरनेशनल एनजीओज हैं, जो फ़लस्तीनी तहरीकें हैं, चाहे फ़लस्तीन के अंदर हों, फ़लस्तीन से बाहर हों, दुनिया के 60 मुल्कों में जो फ़लस्तीनी जो हुर्रियत पसंदी की जो तहरीकें हैं, एनजीओज भी हैं उसमें और भी तंजीमें हैं, उनके साथ हमारे रवाबित हैं और एक अच्छे ताल्लुकात हैं। हम उनके साथ प्रोग्राम्स भी करते हैं जॉइंट्स, और वो भी हमारे साथ कोलैबोरेशन करते हैं। तो ये एक सिलसिला है।
अच्छा, 7 अक्टूबर से लेके अब तक सैयद मुकामत की कामयाबी क्या रही है?
देखिए, 7 अक्टूबर की सबसे पहले तो जो मुशाहिदीन हैं, देखने वाले हैं, उनको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब ये 7 अक्टूबर की बात होती है तो एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि शायद फ़लस्तीन का मसला सिर्फ 7 अक्टूबर है। नहीं, 7 अक्टूबर नहीं है, ये 1948 से चल रही है, ये 1917 से ये बात चल रही है, ये 1896 से चल रही है, इस मसले को 150 साल से ऊपर हो चुके हैं। 7 अक्टूबर की जो कामयाबियों की बात है, जी हाँ, ये बहुत सारी कामयाबियाँ हैं। खुद 7 अक्टूबर 2023 को जब गासिब इसराइल के ऊपर ये जवाबी कार्रवाई हमास के मुजाहिदीन ने की है, तो उनका इंटेलिजेंस फेलियर है, उनका फ़ौजी फेलियर है, उनकी जो जितनी उनकी एक हैबत थी कि वो जो है ना एक एक चीज़ के ऊपर उनकी मॉनिटरिंग थी, वो छोटा सा गज़ा है और उनके पास सेटेलाइट है, उनके पास सब कुछ है, जासूसी निज़ाम है, असलाह है, फ़ौज है, लेकिन वो सब नाकाम हो गई। 4 घंटे तक फ़लस्तीनी नौजवानों ने उसको बेबस कर दिया, और उस ऑपरेशन के अंदर आपने देखा कि कई 100 जो है ना सैनी फौजियों को उन्होंने तकरीबन 250 के करीब सैनी फौजियों को कैदी किया, और कई सैनी जो फौजी थे, जिसमें एक ब्रिगेडियर मारा गया, 2-3 मेजर्स उनके मारे गए, ये सारा कुछ हुआ। फिर उनका जो सबसे बड़ा जासूसी का नेटवर्क था 8200 यूनिट, जिसका वो गज़ा में वो सब यूनिट था, वहाँ के ऊपर जाकर इन्होंने वहाँ से वो सर्वर वहाँ से उठा लिया। पूरी जो इतलात थी, जो मालूमात थी, जो गासिब इसराइल ने कई सालों से एशियाई ममालिक के लिए बना के रखी थी, वो सारी वो फ़लस्तीनी ले गए, हमास ले गई। तो ये वो कामयाबियाँ हैं। इसके साथ अगर आप आगे चले 7 अक्टूबर से बाद से अगर अब तक आएँ, तो इन कामयाबियों में आप ये देख सकते हैं कि जो गासिब से हुई रियासत इसराइल है, उसकी जो मईशत है, उसका जो सिस्टम है, जो उसकी इकोनमी है, वो कोलेप्स कर चुकी है। उसकी जो पोर्ट है, जो इलात शहर के अंदर जो पोर्ट है, वो बैंक्रप्ट हो चुकी है। इसी तरह जो उनकी करेंसी है, जिसको शेकल कहते हैं, शैगल की आप अगर एक साल की उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो अगर आप देखें तो वो मुसलसल गिरावट का शिकार है। वो अपनी बहाली की सूरत पे जब वो 7 अक्टूबर 2023 को था वो आज तक वो उस पर वापस नहीं आ सका है। फिर उनकी बंदरगाह एक बंद हो गई है, फिर उनके जो सबसे बड़ा मसला है कि उनके जो आबादकार हैं वो उनके लिए सरदर्द बन गए हैं, वो फ़लस्तीन को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ये कई ऐसे दर्जनों चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पर बयान करके ये बता सकते हैं कि ये क्या है बिलाखिर। अगर वो इसराइल जो बड़ी बड़ी फ़ौजों को जो है ना माजी में शिकस्त देता था 1967 में 1973 में, आज अगर हम बात कर रहे हैं एक साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, एक छोटा सा ग्रोह है फ़लस्तीन के अंदर हमास, वो उसको शिकस्त नहीं दे सका। 50,000 मासूम लोगों को कत्ल किया है,
नहीं देखा मास के सदर को मार दिया है आपके, 2021 में अलहाज को शहीद कर दिया गया था, तो बैक टू बैक तो आपको वो जवाब दे रहा है। अभी सैयद को आपके शहीद कर दिया है, तो सदर साहब को आपके ईरानी सदर जो है वो शहीद कर दिया, तो बैक टू बैक तो वो आपको जवाब दे रहा है, इसके अलावा और क्या कर सकता है।
देखिए ये जंग है और जंग में अगर कोई ये समझता है कि लोगों की शहादतों से और सरबराहों की शहादतों से जंग जीती जाती है तो ये बहुत ही अहमकाना उनका ख्याल है सहूनियों का कि, और फिर उसको तारीख ने साबित भी कर दिया। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें मैंने बयान की हैं, बहुत सारी चीज़ें जो बयान करना रह गई हैं, इन सब को जोड़ें तो ये सब फ़लस्तीनियों की कामयाबियाँ हैं, जो आपका पहला सवाल था। दूसरी जो आपने बात की, जी हाँ ये अगर ये हमारी शहादतें जो हुई हैं जो सरबराहों की फ़लस्तीन और यानी हमास के कायदे इस्माइल हानिया साहब, सैयद हसन नसरुल्ला जो हिज़्बुल्लाह के कायदे हैं और दीगर कायदीन याहिया सिनवार और इस तरह, इससे देखना ये होगा कि आया इनकी शहादत के बाद की सूरत हाल क्या है। अगर इस कॉन्सेप्ट को तस्लीम किया जाए कि हाँ भाई इनको सबको मार दिया और ये सब हो गया और ये कामयाब हो गया, तो अगर ये मान लें तो फिर हमें थोड़ा सा उससे आगे देखना पड़ेगा कि इनके शहीद होने के बाद आगे क्या हो रहा है, क्या सब कुछ ख़त्म हो गया नहीं हुआ। अगर सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ तो इसका मतलब कि वो नाकाम है, वो उन्होंने इनको इसलिए कत्ल किया था, टारगेट किया था कि वो ये समझ रहे थे कि ये करने के बाद वो कामयाब हो जाएंगे, वो फातह बन जाएंगे, और उन्होंने बन के दिखाया। नेतन्याहू ने जिस वक्त सैयद हसन नसरुल्ला को कत्ल किया जब शहीद हुए वो, उसने पहली मरतबा एक साल में पहली मरतबा वो तल अबीब की सड़कों पर पैदल निकला, पैदल निकल कर उसने रिजस खानी की, उसने एक शेर पढ़े, यानी उसने एक फातिहाना अंदाज में पैदल चला सड़कों पर और कह रहा था कि कोई है जो मुझसे मुकाबला करे। फिर उसने ये भी कहा साथ ही, फिर उसी दिन उसने वीडियो रिकॉर्ड की और वो ईरानियों को उसने धमकी दी, ईरानियों से कहा कि मैं जो है वो तो तुम्हारा खैरख्वाह हूँ, अपनी हुकूमतों से जान छुड़ाओ क्योंकि तुम्हारी हुकूमतें फ़लस्तीन के साथ देती हैं, उनको असलाह देती हैं, ये करती हैं, फलां करती हैं, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रहनुमा हूँ, मैं तुम्हारी जान बचाऊँगा। ये उसने जो बात की ये उस दिन की, लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ, अगले ही दिन ईरान ने क्या किया, उन्होंने जब मिसाइल मारे तो यही नेतन्याहू वो बिल में भाग रहा था, ये बंकर में भागती हुई इसकी फुटेजेज आ गई सोशल मीडिया पर। तो खुलासा ये है कि अगर रहनुमाओं के कत्ल से, सरबराहों के कत्ल से, जो लीडरशिप के कत्ल से अगर हुकूमतें ख़त्म हो जाती, अगर हमास की जदोजहद ख़त्म हो जाती, हिज़्बुल्लाह की जदोजहद ख़त्म हो जाती, तो हम ये तस्लीम कर लेते कि हम शिकस्त खा गए, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ, आज क्या हो रहा है, आज तल अबीब के ऊपर मिसाइल गिर रहे हैं, हैफा के ऊपर मिसाइल गिर रहे हैं, आज कोई मकाम इसराइल का ऐसा नहीं, आज नेतन्याहू की अपनी रिहाइशगाह पर ड्रोन जाके हिट कर रहे हैं। तो कहाँ है वो सारा सिक्योरिटी सिस्टम और कहाँ है वो सारी चीज़ें जिसके बारे में पूरी दुनिया को दर्श दिया जाता है कि इसराइल की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, इसराइल नाकाबिले तस्खीर है, इसराइल फला। एक छोटा सा ड्रोन जो नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर लगता है, इसराइल का पूरा टेक्नोलॉजिकल सिस्टम उसको रडार पर नहीं देख सका। अच्छा चले देख लेता तो उसको वो रोक लेता।
तो आखिर इस जंग का नतीजा क्या हो सकता है?
देखिए नतीजा यही हो सकता है,
और इसराइल क्या चाहता है ये भी थोड़ा सा बता।
इसराइल तो यही चाहता है कि वो पूरे फ़लस्तीन पे कब्ज़ा कर ले, पूरे लबनान पे कब्ज़ा कर ले, उसके बाद शाम पे कब्ज़ा करे, फिर इराक पे, फिर ईरान पे, फिर अफगानिस्तान, फिर मक्का मदीना। ये ग्रेटर इसराइल का मनसूबा है, वो ये चाहता है। अब होगा क्या, जो आज तक 76 ईयर्स में इसराइल का ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका है, वही ख्वाब आज भी पूरा नहीं होगा। आप देखें कि दाइश बनाई गई थी 2011 में, 2019 तक ये दाइश ने क्या किया, दाइश ने आकर कत्लेआम किया, कहाँ पर, सीरिया में, इराक में। ये क्या था, ये ग्रेटर इसराइल का मंसूबा था, ये सीरिया और ये इराक के अंदर एक नई हुकूमतें बनाना चाहते थे, तकसीम करना चाहते थे, नहीं कर सके, फेल हो गए। अब इन्होंने नए सिरे से आगाज़ किया, नए आगाज़ में अब ये चाहते हैं कि पूरे फ़लस्तीन पर काबिज़ हो जाए, लबनान पर इनका फ़ौजी तसल्लुत हो, जो नहीं हो सकता। जब तक हिज़्बुल्लाह वहाँ पर है लबनान में, दुनिया की कोई ताकत, क्योंकि मैंने बहुत करीब से उनके पढ़ा है, उनके बारे में मुताला किया है, बहुत से उनके रहनुमाओं को जानता हूँ, बहुत से लोगों को देखा है, उनकी जो नफ्सियात है, जो उनका तरीक़ाकार है, जो 1982 से 1982 से हम देखते चले आ रहे हैं, उसके मुताबिक हम इस नतीजे पर हैं कि जब तक हिज़्बुल्लाह है, लबनान पे कब्ज़ा इसराइल या अमेरिका नहीं कर सकते। इसी तरह जब तक हमास है, फ़लस्तीन को पूरे के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर सकते। तो ये नतीजा ये होगा कि इसराइल को पीछे हटना पड़ेगा। इसराइल का इस वक्त बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान हो रहा है, जो कि फ़ौजी नुकसान है, और फ़ौजी नुकसान ज़्यादा कीमती होता है। कोई भी रियासत हो, भले इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, लेकिन जो उसका फ़ौजी नुकसान है, जो उसके टैंक्स तबाह हो रहे हैं, जो उसके फ़ौजी लोग जो मारे जा रहे हैं, जो उसकी बिल्डिंग्स के ऊपर, जो उसकी दिफा और वजारत जंग की जो 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 इमारतें हैं, जो उनके इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, उनके ऊपर बाकायदा मिज़ाइल, रॉकेट्स और ड्रोन गिर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो इस जंग के अंदर ज़्यादा अरसे तक वो नहीं चल पाएंगे। उनकी कोशिश यही थी। देखें, एक बात याद रखें जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, 1982 में भी ऐसा ही हुआ था। इसराइल ने लबनान पर पूरा कब्ज़ा कर लिया था। भागा कब वहाँ से? सन 2000 में। 18 साल की जंग के बाद इसराइल वहाँ से भागा है। तो अगर 18 साल जंग हो सकती है 1982 में, कि जब कुछ नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, कोई बहुत बड़ी कोई फोर्स नहीं थी, बहुत कुछ नहीं था, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि आज जो इस्लामी मुज़ाहमत है उसके पास 1982 के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स भी है, ज़्यादा जो 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 स्ट्रेटजिस्ट माहिर भी हैं, और ज़्यादा असलाह भी है, और ज़्यादा जो है उनके पास टेक्नोलॉजी भी है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये जंग चलेगी तो 18 साल का तजुर्बा तो ऑलरेडी हमारे पास है जो इस्लामी मुदाहमत का है। अगर इसराइल ये समझता है कि वो 18 साल तक वो लड़ सकता है तो वो लड़ता रहे।
अमरीकी सदारती इंतखाब में रिपब्लिकन की फतह के बाद क्या जंग की सूरत आगे भी यही रहेगी?
देखें, ये भी बड़ा एक अच्छा वो सवाल है कि अमरीकी हुकूमत कोई भी हो, रिपब्लिकन हों या डेमोक्रेट्स हों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस वक्त ये बातें कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद फ़लस्तीन का मसला हल हो जाएगा, और बाज़ लोग पाकिस्तान के बारे में भी बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बड़ा सुकून मिलेगा और पाकिस्तान के साथ बड़ी चीज़ें होंगी। नहीं, देखिए, एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जो फ़लस्तीन का मसला है, लबनान का मामला है, इसका फ़ैसला ना तो वाइट हाउस में होना है, ना वाशिंगटन में होना है, ना ही डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पर होना है। इसका फ़ैसला अगर होना है तो गज़ा और लबनान के मैदान में होगा। गज़ा में हमास फैसला करेगी, लबनान में हिज़्बुल्लाह फ़ैसला करेगी। हमास अपना फ़ैसला बता चुकी है, कैदियों की रिहाई, गज़ा से इसराइली फ़ौजों का इनखला और गज़ा को रीबिल्ड करने में, ये उनका फ़ैसला है। लबनान का भी यही फ़ैसला है कि गज़ा पर इसराइली जारियत को बंद किया जाए। यमन का भी यही फ़ैसला है। तो जो भी मेरे भाई फ़ैसला होना है वो मैदान में होना है। डोनाल्ड ट्रंप ने, रिपब्लिकन या किसी डेमोक्रेट्स ने नहीं करना है। यही रिपब्लिकन हैं, यही डेमो, ये अपना डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने 2019 में मकबूज़ा फ़लस्तीन के अंदर जो हमारा दारुल हुकूमत है, अबदी, जो अलकुद्स शरीफ है, जो यरूशलम शहर है, फ़लस्तीन का एक अबदी दारुल हुकूमत है, उसको इन्होंने उसकी हैसियत चेंज की थी। चेंज करने के बाद इन्होंने उसको कहा कि ये इसराइल का दारुल हुकूमत है। इन्होंने अपना सफारतखाना तल अबीब से निकाल कर यरूशलम में शिफ्ट किया, दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि अमेरिका ने इसको स्टेटस दे दिया। तो ये वो ख़यानत थी। यही डोनाल्ड ट्रंप था जिसने खुद एतराफ़ किया कि हमने $7 trillion दाइश के ऊपर खर्च किए। क्यों किए? ताकि दुनिया को फ़लस्तीन के मसले से पीछे हटा दें, फ़िरका वारियत में उलझा दें, कत्लेआम में उलझा दें, और शाम में सारा कुछ हुआ, ये इराक में सब कुछ हुआ, ये डोनाल्ड ट्रंप था। तो अब अगर ये डोनाल्ड ट्रंप आया है तो ये वही इंसानियत का कातिल है जो पहले ये काम गई। यही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने जो ईरान के कमांडर को भी वहाँ पर बगदाद के अंदर, और जो उनके इराकी कमांडर थे अबू मेहदी और कासिम सुलेमानी, दोनों को यानी सोवरेनिटी को हिट किया। एक इराक खुद मुख्तार मुल्क है, अमरीका ने क्या किया, उसकी खुद मुख्तारी पर हमला किया। ये कासिम सुलेमानी का कत्ल नहीं था या अबू मेहदी का कत्ल नहीं था, बल्कि ये एक खुद मुख्तार मुल्क की खुद मुख्तारी पे हमला था। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया, और कई उसकी जराइम हैं, कई उसकी यानी गैर इंसानी उसके काम हैं जो बयान किए जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप से जो उम्मीद जो लोग रखते हैं उन्हें चाहिए कि वो आकेलाना अपनी अकल का इस्तेमाल करें और अपनी नज़रें गज़ा और वो लबनान के मैदान पर रखें।
मगरबी दुनिया और सफारती दुनिया में दोनों जगहों पर सिर्फ टू स्टेट सॉल्यूशन की बात की जाती है, तो क्या मसला फ़लस्तीन का हल यही है?
देखिए, जो लोग टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, चाहे मगरबी दुनिया हो या पाकिस्तान के अंदर हो या दुनिया में कहीं भी हो, मेरा ख्याल है कि इनको थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेनी चाहिए, सियासत की अलिफ़बे पढ़नी चाहिए, क्योंकि देखें ये बहुत ही अजीब सी बात है कि कोई रियासत का नुमाइंदा ये बात कहे कि फ़लस्तीन के मसले में दो रियासत ही हल कर दो। यानी रियासत क्या होती है? रियासत का मतलब है जहाँ पर पापुलेशन हो, जिसकी डिफाइंड टेरिटरी हो, जहाँ पर एक गवर्नमेंट हो, जहाँ पर एक सॉवरेनिटी हो। तो आप मुझे बताएं कि ये कहते हैं टू स्टेट सोल्यूशन, अगर आपने पढ़ा है या जो लोग ये बात करते हैं उसमें इन्होंने लिखा है टू स्टेट सोल्यूशन में कि फ़लस्तीन की एक रियासत होगी छोटे से हिस्से पर, जहाँ पर ना फ़ौज रखने की जो है वो उनको इजाज़त है, ना अपनी करेंसी छापने की इजाज़त है। तो आप मुझे बताइए, फ़ौज नहीं होगी तो सॉवरेनिटी कैसे होगी? इस मुल्क की खुद मुख्तारी कौन संभालेगा? करेंसी नहीं होगी तो इसका मतलब कि आपकी गवर्नमेंट नहीं है। तो रियासत के चार अनासिर हैं जो जो सियासत हमें बताती है, जो पॉलिटिकल साइंस का इल्म है वो बताता है कि किसी रियासत के पास चार चीज़ें होनी चाहिए जो मैंने बयान की हैं। अब उसमें से दो तो नहीं है और इन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिया है कि वो दो हुए बगैर रियासत बनाएंगे। तो क्या अमरीका इन दो के बगैर रियासत बन सकता है? क्या बरतानिया इन दो चीज़ों के बगैर रियासत बन सकता है? क्या कोई और यूरोपीय और मगरबी मुल्क इन दो चीज़ों के बाद, इन दो चीज़ों को माइनस करके अपने आप को रियासत कह सकता है? जब ये सारे नहीं कह सकते तो फ़लस्तीन भी नहीं कह सकता। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का वतन है जो 1948 तक है, उसकी बॉर्डर्स नहर से बहर तक हैं, ठीक है, फ्रॉम द रिवर टू द सी जो हम कहते हैं, ये वो फ़लस्तीन है जो पूरे का पूरा फ़लस्तीन है, जिसका दारुल हुकूमत कुछ से शरीफ है। अब ये कैसे होगा? देखिए बहुत आसान है। अगर कोई ये समझता है कि हम यहूदियों के दुश्मन हैं या हम यहूदियों को कत्ल करना, नहीं, हम नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि भाई जो यहाँ पर हिजरत करके लाए गए थे, जिन्होंने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया था, इनको आप वापस भेजें। जिन लोगों को आपने 15 मई को, आपको पता है एक दिन में 25,000 लोग कत्ल किए गए, 600 देहातों के ऊपर कत्लेआम किया गया, 15 लाख फ़लस्तीनियों को एक दिन उनके घर से जबरी तौर पर फ़लस्तीन से निकाल दिया गया, वो दुनिया के दूसरे मुल्कों में रहते हैं। हम ये कहते हैं कि जिनको आपने निकाला है इनको वापस लाएं, जिनको आप लाए थे उनको निकालें। ये जो वापस आएंगे ये इस मुल्क के बाशिंदे हैं। 1948 में फ़लस्तीनी मुसलमान, फ़लस्तीनी यहूदी, फ़लस्तीनी ईसाई सब एक साथ रहते थे, ये फ़लस्तीनी अरब कहलाते थे। ये फ़ैसला करेंगे 1948 वाले लोग कि आया फ़लस्तीन की किस्मत का फ़ैसला क्या होगा। इसका फ़ैसला कोई वो मगरिब नहीं करेगा। अक़वामे मुत्तहिदा के पास इसका राइट नहीं है, किसी के पास ये राइट नहीं है। अक़वामे मुत्तहिदा ने पहले भी 29 नवंबर 1947 को करारदाद नंबर 181 के ज़रिए फ़लस्तीन को तकसीम किया था, जो सबसे बड़ा इनजस्टिस है, ठीक है ना। 55% लैंड उठाकर वो चंद लाख यहूदियों को दे दी। तो ये ख़यानत अब नहीं होने देंगे। हम ये डिमांड करते हैं कि जो फ़लस्तीन का मसला है वो फ़लस्तीनियों की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। अगर वो ये फ़ैसला करते हैं, ठीक है भाई, जो बाद में लाए गए थे यहूदी आबादकार, अगर वो रहना चाहते हैं, अगर वो ये मान लेते हैं कि वो भी रहें तो भाई वो रह लें, लेकिन फ़लस्तीनियों की मर्ज़ी से फ़लस्तीन होगा, फ़लस्तीनी परचम होगा, फ़लस्तीनी रियासत जैसे पहले थी 48 तक वैसे होनी चाहिए। ये एक सोल्यूशन है जिसमें ना जंग है, ना कत्लेआम है, ना कोई खून खराबा है। यूरोप में चले जाएँ या जो है वो फ़लस्तीन को तस्लीम कर लें।
पाकिस्तान फ़लस्तीन के लिए अपना क्या किरदार अदा कर सकता?
पाकिस्तान का फ़लस्तीन के साथ एक बड़ा गहरा रिश्ता है, जिसकी बुनियादें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी थी, अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने रखी थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह 1917 से ही, बल्कि उससे पहले से भी, जिस वक्त साइक्स पिको पैक्ट हुआ था और उसके बाद बेलफोर डिक्लेरेशन आया, तो कायदे आज़म ने हमेशा बरसगीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, यहाँ पर जब तकसीम नहीं हुई थी, हमेशा लोगों को इस बात की तलकीन की, ताकीद की कि ये जो साजिश की जा रही है बरतानवी सरपरस्ती में कि वहाँ पर फ़लस्तीन के ऊपर यहूदियों को लाने की बात की जा रही है और एक रियासत बनाने की, बरसगीर के मुसलमान इस पर खामोश नहीं बैठेंगे, हम इस पर आवाज़ बुलंद करेंगे, एहतजाज। ये कायदे आज़म का मौक़िफ़ था। और वक्तन फ़वक्तन फिर हमने देखा कि 1920 के बाद कायदे आज़म ने मुसलसल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलासों में हमेशा फ़लस्तीन की हिमायत की बात की और कहा कि हम नहीं मानेंगे इसराइल को, जो भी, यानी उस वक्त इसराइल का नाम भी नहीं डिज़ाइन हुआ था, सिर्फ ये बात हो रही थी कि यहूदी लाए जा रहे हैं, आबाद किए जा रहे हैं और यहूदियों की एक रियासत फ़लस्तीन में बनाई जाएगी। तो कायदे आज़म उस रियासत के सख्त मुखालिफ थे, हत्ता यहाँ तक कि जब ज़रूरत पड़ी कायदे आज़म ने बरसगीर में फ़लस्तीन फ़ंड कायम किया, मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब को यहाँ से पैसे भेजे। मुफ्ती अमीनुल हुसैनी जो फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म थे, वो खतूत लिखते थे कायदे आज़म से। यानी ये हमारा ये बताने का मकसद इस वक्त ये है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। करारदाद पाकिस्तान 1940 23 मार्च, पहली करारदाद ये थी कि बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का मुतालबा किया गया। दूसरी करारदाद इसके साथ साथ पेश हुई जिसमें कहा गया कि बरसगीर के मुसलमान फ़लस्तीन की हिमायत से दस्तबरदार नहीं होंगे और इस जो इस तरह की रियासत बनाई जा रही है यहूदियों की उसे तस्लीम नहीं करेंगे। ये बात आगे बढ़ गई, 1947 में पाकिस्तान बना, कायदे आज़म को वो ऑफ़र की गई कि आप जो है वो इसराइल के लोगों से बात करें, उन्होंने नहीं की। जब 48 में इसराइल बन गया उसके बाद BBC और रॉयटर्स और बाकी लोगों के जरिए बातचीत हुई, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। कायदे आज़म ने रिजेक्ट किया, कायदे आज़म ने कहा ये एक इललेजिटिमेट रिजीम है, मैं इसको तस्लीम नहीं करूँगा और पाकिस्तान इसे तस्लीम नहीं करेगा, कभी तस्लीम नहीं करेगा। ये नहीं कहा कि फ़लस्तीन जब तक कर नहीं लेता तो हम कर लेंगे, कहीं इसमें वो इफ़ और वो बट नहीं है, कैटेगोरिकल है, कहा कि नहीं करेगा। तो लिहाजा पाकिस्तान के अवाम, बतौर मुसलमान हमारा रिश्ता है, बतौर पाकिस्तानी हमारा स्ट्रॉन्ग रिश्ता है, और बतौर इंसान भी हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम वहाँ पर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ ये बात करें। लिहाजा हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो भी कायदे आज़म के जो आइडियोलॉजी है वही वो नज़रिया पाकिस्तान है, जो कायदे आज़म ने फ़िक्र दी है, जो कायदे आज़म ने आइडियोलॉजी दी है, वही हमारी फ़ॉरन पॉलिसी के जो चार उसूल हैं वो सारे उसी पर वो बनाए गए हैं। तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि हुकूमत भी उसी पॉलिसी पर चले जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डिफ़ाइन कर दी है, उसके अंदर कहीं कोई तोड़ मोड़ नहीं आएगा, उसमें कहीं कोई ये नहीं कहना है कि उस वक्त तक नहीं करेंगे, नहीं, एक क्लियर स्टेटस है। अब हाँ, क्या कर सकते हैं हम, हुकूमत उनकी वो मदद कर सकती है वो करे, और अब तक उन्होंने की है, एक अच्छी बात है कि 7 अक्टूबर के बाद से हुकूमत पाकिस्तान ने कई शिप्स वहाँ पर भेजे हैं, और ये मैं समझता हूँ कि जितने भेजे हैं उतनी उससे डबल और ज़रूरत है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, आवाम से अपील करने की ज़रूरत है कि आवाम फ़ंड जमा करवाएँ और उस इमदाद में हम इजाफ़ा करें, ना सिर्फ वो गज़ा के लिए बल्कि लबनान के लिए भी भेजें। ये सबसे अहम काम है जो हुकूमतों को करना है। आवाम का जो करने का काम है पाकिस्तानी, वो ये है कि वो अपनी हुकूमतों पर वो नज़र रखें, हुकूमतों को इस फिक्र से, इस पॉलिसी से हटने ना दें, अपना प्रेशर बनाएं, अपनी आवाज़ उठाएं, इस तरह के प्रोग्राम्स करें, सेमिनार, मुजाहरे, यूनिवर्सिटियों में डिबेट्स, टॉक्स, जो मुमकिन हो सके वो डिस्कशंस, लॉबिंग, ये की जाती रहनी चाहिए ताकि इससे हुकूमतों के ऊपर असर पड़ता है। ये कोई हुकूमत दुश्मनी नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा राइट है कि हम अपनी बात अपनी हुकूमत तक पहुँचाएं। देखें, पब्लिक ओपिनियन ही किसी रियासत की फ़ॉरन पॉलिसी बनाती है। अब हमारी पब्लिक यानी हमारी ओपिनियन क्या है कि हम कहते हैं भाई फ़लस्तीन के साथ खड़े हों, पूरा पाकिस्तान यही कहता है, तो हुकूमत पब्लिक ओपिनियन से हटकर पीछे नहीं जा सकती। तो इसलिए ये इस तरह के काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो कर सकती है वो अपना काम करे, और जो अवाम कर सकते हैं, अवाम भी जो अपने अपने तौर पर है वो अपना किरदार अदा करें। कोई बोल सकता है वो बोले, कोई वो लिख सकता है वो लिखे, और कोई अपने माल से, कोई सियासत से, कोई अपने अखलाक से, जिस तरह जो जिसकी इस्तेआत है वो फ़लस्तीन के लिए जो कर सकता है बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, बतौर इंसान, वो करे।
आखिर में पाकिस्तानी कौम को क्या मैसेज देंगे?
यही मैसेज है जो मैंने बताया है कि देखें, मसला फ़लस्तीन इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, और मेरा ख्याल है कि हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम इसको फरामोश ना होने दें, इसको अलाइव रखें, इसके लिए इसकी पुष्ट बनाई करें, इसके पीछे खड़े रहें, और जितना मुमकिन हो हम इसको काम को आगे बढ़ाएं और उनकी आवाज़ बने। ये वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है, ना सिर्फ इसलिए कि हम पाकिस्तानी हैं, इसलिए भी कि हमारे कायद ने ये काम किया है, हमारे बानियान पाकिस्तान ने ये हमें नसीहत की, और पैगंबर गरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर जो हमारे लिए मौज़िज़ और मोहतरम हैं, जिनकी वजह से आज हम मुसलमान हैं यहाँ पर और उनकी उम्मत कहलाते हैं, उनकी अहादीस हैं कि मज़लूमों का साथ दें, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ रहें, यही सबसे अहम ज़िम्मेदारी है, मज़लूम का साथ दें और ज़ालिम के ख़िलाफ़ रहें। और साथ साथ देखिए, जो सबसे अहम काम हो सकता है वो ये भी है कि आप अपनी सतह पर, मैंने कहा ना, जो जितनी इस्तेआत रखता है वो करें। मसलन आपकी इस्तेआत है, आप कोई बायकॉट कर सकते हैं, कोई खाने पीने की अशिया का बायकॉट है, लोगों ने किया है, ऐसी मसनूआत हैं जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो मुनाफा है वो अमरीका और इसराइल तक जाता है। मसलन शायद इसराइल ना भी जाता हो डायरेक्ट, लेकिन अमरीकियों तक जाता है।
क्या बायकॉट से इतना फ़र्क पड़ता है?
बिल्कुल पड़ता है। और फिर अमरीकी हुकूमत जो है वो बराह रास्त इस जंग के अंदर कौन है ज़िम्मेदार? वो अमरीकी हुकूमत है। सारा अरबों डॉलर का असला अमरीकी हुकूमत दे रही है। यहाँ पर जो आप 10 रुपये 20 रुपये 100 50 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, वो वहाँ पर गोलियों की शक्ल में फ़लस्तीनियों पर वो बरसता है, वो बारूद की शक्ल में वो बरसता है। तो इसका बायकॉट करें, ये बहुत ज़रूरी है, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। और मैं इससे आगे बढ़कर कहता हूँ कि जो हुकूमतें हैं, मुसलमान और अरब हुकूमतें ख़ास तौर पर, ये ट्रेड का बायकॉट करें, जो इसराइल के साथ ट्रेड कर रही हैं। ये सबसे बड़ी ये बदबख्ती है कि अभी तक जो है वहाँ पर हमारे जो गज़ा के बच्चे हैं और लबनान में, वहाँ पीने को पानी नहीं मिलता उनको, और लेकिन जो गासिब इसराइली फ़ौज के लोग जो मिनरल वाटर पीते हैं वो हमारे वो मुसलमान और अरब कंट्रीज़ की तरफ से जाता है, तो हमें ट्रेड का भी बायकॉट की आवाज़ लगानी है, और अपने तौर पे हम जो कर सकते हैं वो यही है कि हम अपनी अपनी इस्तेदात के मुताबिक अपने काम को अंजाम दें।
बहुत शुक्रिया साबिर साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में समय वक्त दिया। मेरी गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। देखते रहेगा विजडम गेट पे। पाकिस्तान जिंदाबाद।